मुआज़िज़ सामईन हज़रात, ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में बुजुर्गाने दीन की कमी नहीं है। आइए आपको हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर बुजुर्ग हज़रत मीरा सैयद अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की शान में एक शानदार वाकया पेश करने जा रहे हैं। ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ टी सीरीज़ की, फ़नकार तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी, म्यूज़िक राजेंद्र प्रसन्ना, और ये वाकया लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब शौक वज़ीर गंजवी ने। तो आइए सुनते हैं शान शहीद दास्तान सैयद मीरा अली दातार।
एक सच्चे वली की मैं सुनाता हूँ दास्तान, गुजरात के सैयद अली दातार का बयान। पाई है जवानी में शहादत जनाब ने, गुजरात को बनाया सदाकत का गुलस्तां।
पाई है जवानी में शहादत जनाब ने, ये हकीकत है कि आप शादी से पहले ही, दूसरे दिन आपकी शादी होने वाली थी, 16 साल की उम्र में दौरे शबाब में शहादत पाते हैं। इसीलिए तो जनाब शौक कहते हैं कि पाई है जवानी में शहादत जनाब ने, गुजरात को बनाया सदाकत का गुलसितां। किस तरह बनाया, आइए सुनते हैं।
सुनो ये सैयद अली दातार मीरा की,
वो एक सच्चे वली है आल है वो शाह मर्दा की,
वो एक सच्चे वली है आल है वो शाह मर्दा की, वो एक सच्चे वली है आल है वो शाह मर्दा की।
सुनो ये दास्तां सैयद अली दातार मीरा की,
सुनो दातार मीरा की, सुनो दातार मीरा की,
सुनो ये दास्तां सैयद अली दातार मीरा की,
वो एक सच्चे वली है आल है
पाकर शहादत पाई है चढ़ती जवानी में, पिदर टोसू मियां सैयद अली मुद्दीन दादा थे, अली की आल में से थे मरातिब उनके आला थे, किताबों में अली मुद्दीन का है यूं पता लिखा, दयारे लखनऊ में एक सनोसी गांव था उनका, वो बाशिंदा कदीमी शहर छोटा नागपुर के थे, वो अपना छोड़कर घर बार सब गुजरात में आए, सभी गुजरात अहमद शाह के जेरे हुकूमत था, गए दरबार शाही में तो अहमद शाह ने पूछा, कहो हजरत यहाँ किस काम से तशरीफ लाए हो, तारुफ तो कराओ किस जगह से आप आए हो, ये बोले शाह से हजरत वतन है नागपुर अपना, इरादा है मेरा
मेरा गुजरात में आबाद होने का। यहाँ आबो हवा अच्छी सुनी थी इसलिए आया, फजा अच्छी लगी मुझको यहाँ की इसलिए ठहरा। अंधेरा कुफ्र बातिल का यहाँ है जो मिटाऊंगा, बफजले हक सदाकत की यहाँ शम्मे जलाऊंगा। मोहब्बत भाईचारा हक परस्ती अदलो ईमा की यहाँ फैलाऊंगा, तालीम में शाहे रसूला की। बादशाह बेखुद हुआ जोशे मसरत से, अदब के साथ बिठलाया उन्हें ताज़ीम इज्जत से। कहा ये शाह ने हजरत मेरे हक में दुआ कीजिए, मुझे बेहद खुशी होगी यही हजरत रहा कीजिए। इजाजत बादशाह ने दी बसाया शहर सन अपना, अली मुद्दीन ने समझा इसी को फिर वतन अपना। वहीं पैदा हुए टोसू मियां जो नेक इंसान थे, बहुत ही खूबसूरत नेक सीरत वो पहलवा थे। जवां जब हो गए तो हो गई उनकी वहीं शादी, गुजरती थी वहीं पर जिंदगी उनकी आजादी। बहुत ही खूबसूरत नूर अफशा उनका चेहरा था, के उनका देख कर जलवा फिदा हर शख्स होता था। वहीं डोसू मियां के दो पिसर पैदा हुए ऐसे, हजल थे देख कर शम्सो कमर भी दोनों के चेहरे। थे एक सैयद मोहम्मद दूसरे सैयद अली मीरा, लकब दातार का पाया था मीरा थे बड़े जीशा। अलीमुद्दीन दादा के लिए बेहद वो प्यारे थे,
अलीमुद्दीन दादा के लिए बेहद वो प्यारे थे, अलीमुद्दीन दादा के लिए बेहद वो प्यारे थे।
अलीमुद्दीन को फरमान अहमद शाह ने भेजा के पल्ली गांव में जाकर बना लो आस्तां अपना। वहीं से परगना पाटन की फरमाए निगहबानी, तुम्हारे
तुम्हारे डर से बागी कर नहीं पाएंगे मनमानी। मिलेगी खाने को मेवा तरो ताजा समरशीनी, वहाँ ये देखना कुदरत ने क्या क्या नेमतें बख्शी। फजा ऐसी सुहानी है मजा जन्नत का आएगा, वहीं पर मुस्तकिल रहने को जी हजरत का चाहेगा। वहाँ के लोग कुछ ऐसे हैं जो फितने उठाते हैं, जराइम करते रहते हैं, शरीफों को सताते हैं। वहाँ का राजा मेवा सन बगावत पर है आमादा, करो उसकी बगावत सर्द और सबको करो सीधा। अलीमुद्दीन बीवी बच्चों को लेकर वहीं पहुंचे, बनाए अपने रहने को मका आराम से ठहरे। दिया पैगाम मेवा सन को और भीलों को समझाया, रहो अमनो अमा से बादशाह का हुक्म है आया। मगर राजा ये सुनकर जंग करने को निकल आया, उसे दो सूमिया ने तेग से फिर अपनी समझाया। फरारी हो गया राजा तो भीलों को पकड़वाया, उन्हें दो सूमिया ने शाह के दरबार पहुंचाया। इनकलाब आया के अहमद शाह ने दारे फना से कूच फरमाया। पिसर था एक अहमद शाह का वो तख्त पर बैठा, उसे महमूद शाह कहते थे, आलम था जवानी का। बहादुर था बड़ा शमशीर जन था आन वाला था, कई गुजरात के अच्छे किलों को जीत डाला था। हुकूमत उस घड़ी दिल्ली में थी बूढ़े शहंशाह की, बहादुर शाह जफर की हिंदू पर तब हुक्मरानी थी। गया साई सिख दरबार में उसने कहा जाकर, सुनो आलम पना मांडो का राजा है बड़ा कट्टर, बड़ा जालिम सितमगर है, शरीफों को सताता है। वो रोजाना गरीबों बेकसों का खून बहाता है, सभी इंसान उसके जुल्म से बेहद परेशान हैं कि अपनी जिंदगी से तंग सब हिंदू मुसलमा है। वो काफिर कुफर फैलाता गुरूर अपना दिखाता है, बुराई दीन की करता है और फितने उठाता है। ये सुनकर बादशाह ने खत लिखा गुजरात को भेजा, लिखा महमूद को मांडो पे तुम जाकर करो हमला, वहां के राजा को सीधा करो या कत्ल कर डालो। जरूरत फौज की जितनी हो तुम दिल्ली से मंगवा लो।
मैं बूढ़ा हो चुका हूँ वरना खुद मैदान में आता,
खुद मैदान में आता, मैं खुद मैदान में आता।
बात है, जब दिल्ली में मुगलिया सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और बहादुर शाह जफर उस वक्त मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह दिल्ली में तख्त नशीन थे और गुजरात में महमूद शाह का राज था, तो जब महमूद शाह ने बहादुर शाह जफर को ये खत लिखा तो उसके जवाब में बहादुर शाह जफर ने लिखा कि उस राजा को, मांडो के राजा को समझाओ, अगर नहीं मानता है तो जंग करो या उसको कत्ल कर दो, जितनी फौज की जरूरत है आप दिल्ली से मंगा लो। जब राजा का ये जुल्म लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो बहादुर शाह जफर ने अपनी फौज भेजने का ऐलान किया। महमूद शाह के पास दिल्ली का जब ये फरमान जाता है तो क्या होता है, समाज फरमाइएगा।
गया महमूद शाह के पास जब फरमान दिल्ली का, दिया महमूद शाह ने हुक्म फौरन जंग करने का, कहा ये अफसरों से फौज को तैयार करना है, सुबह को कूच करके मांडो के राजा से लड़ना है, करो तैयारियां पूरी, कमी कोई न रह जाए, करेंगे जंग ऐसी कोई जालिम बच नहीं पाए, हमें इंसानियत के नाम को ऊंचा उठाना है, बगावत जुल्म करने वालों का अब सर उड़ाना है, करो तैयार लश्कर जंग करने हम भी जाएंगे, फतह जब तक न होगी लौट कर वापस न आएंगे, खबर ये भेज दी तो सूमिया को आप भी आए, पराए जंग जाबाजों को अपने साथ में लाए, हुई महमूद शाह की फौज जब तैयार दम भर में, तो जज्बा सरफरोशी का नजर आता था लश्कर में, हर एक फौजी पे थे तेगो सिना तीरो तबर भाले, सभी पर गुर्ज थे बरछी तीनेजे थे चमक वाले, सिरा बख्तर था सब पर चार आईना था जंजीरें, सभी पर खौद फौलादी थे ढाले और शमशीरें, जवानी की उमंगे थी सभी थे रन के मतवाले, सभी घोड़ों पे बैठे थे कमाने कांधे पे डाले, वो अफसर खूबसूरत वर्दियों और कलगियों वाले, आलम थामे हुए तलवार अपनी नाम में डाले,
इशारा पाते ही घोड़े
लश्कर तैयार करके राजा से जंग करने के लिए चलता है। हजरत सैयद मीर अली दातार के वालिद दोसू मियां को भी खबर भिजवाई जाती है कि आप भी अपने जावाजों को लेकर उस राजा से लड़ने के लिए आ जाएं। उसके बाद हजरत क्या होता है, ये जंग किस तरह होती है, समाप्त कीजिएगा।
इधर दोसू मियां ने शाह का मक्तूब जब पाया तो जाबाजों को अपने साथ लेकर कूच फरमाया, सवार उनके थे 250 बहादुर हौसले वाले, चले तेजी से सब दुश्वार रस्ते कता कर डाले, मिल
निकले वो रास्ते में शाह के लश्कर से जब जाकर हुई महमूद शाह को वो खुशी के नारा था लब पर गरज वो दोनों लश्कर मांडोगढ़ में हो गए दाखिल कहा सबने खुदा का शुक्र मंजिल हो गई हासिल लगाए अपने अपने खेमे थम कर फौज वालों ने बनाई छावनी मांडों में इस्लामी रिसालों ने गुजारी रात अपनी बाखुशी बख्ते सहर आया वुजू करके नमाज़े फजर पढ़कर एक सुकून पाया किया दरबार फिर महमूद शाह ने सबको समझाया बनू ने जंग के कुछ राज से आगाह फरमाया बुलाकर अपना कासिद राजा को पैगाम भिजवाया लिखा तुम जुल्म अपना छोड़ दो मानो कहा मेरा खुदा के बंदे हो तुम बंदगी उसकी करो पै हम रहो अमनो अमा से और करो इंसाफ को कायम न मानोगे तो हम तुमको मजा ऐसा चखा देंगे तुम्हारा जुल्म करना हम हमेशा को मिटा देंगे दिखाओ अपनी ताकत जंग को तैयार हो जाओ
दिखाओ अपनी ताकत जंग को तैयार हो जाओ दिखाओ अपनी ताकत जंग को तैयार हो जाओ
अपने 250 बहादुर सवार लेकर चल पड़ते हैं रास्ते में बादशाह का लश्कर भी मिलता है महमूद शाह का जब दोनों लश्कर मिलते हैं तो नारे तकबीर की सदा बुलंद होती है और फिर ये दोनों लश्कर मिलकर मांडोगढ़ की तरफ चल पड़ते हैं वहाँ नज़दीक जाकर आपने एक मैदान में अपने अपने खेमे लगाए फजर की नमाज के बाद महमूद शाह ने अपने कासिद को भेजकर ये खबर भेजी कि राजा या तो राह रास्त पर आ जाए लोगों को सताना छोड़ दे अमनो अमान से रहे और अगर नहीं माने तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए बादशाह महमूद शाह की बात सुनकर वो राजा क्या करता है समझ कीजिएगा जो देखा शाही लश्कर राजा ने बिल्कुल न घबराया किले का बंद फाटक कर लिया तोपों को लगवाया किले पर चार सू फौजी लगाए ऊंचे बुर्जों पर फसीलों पर चढ़े सब तोप और तीरों कमा लेकर किला राजा का था मजबूत काफी लंबा चौड़ा था बहुत लश्कर था उसके पास वो बेफिक्र रहता था रसद काफी थी उसके पास सब राहत का सामान था वो अपनी ताकतों दौलत पे और लश्कर पे नाजा था खबर ये भेज दी महमूद शाह को लौट जाओ तुम तुम्हारा हुक्म ना मंजूर ताकत आजमाओ तुम राजा महमूद शाह ये जवाब भेजता है कि हमें तुम्हारी बात पता ही मंजूर नहीं है तुम अपना लश्कर लेकर वापस हो जाओ तो क्या महमूद शाह और हजरत सैयद मीर अली दातार के वालिद टोसू मियां अपना लश्कर वापस लाते हैं। सुनिएगा आगे।
न कोई जुल्म छोड़ूंगा न मैं ईमान लाऊंगा, जो है ईमान वाले हर घड़ी उनको सताऊंगा, मुझे इंसानियत से क्या गरज, आजाद इंसान हूं, सभी जुल्मों से तम है खेल मेरा, मैं पहलवाऊं, कहानी जन्नतों दोजख की तुम सबको सुनाते हो, हमें भी अपने अनदेखे खुदा से तुम डराते हो, हमारे किले का तुम खोल कर देखो तो दरवाजा, करीब आओ तो लग जाए तुम्हें ताकत का अंदाजा,
जो टकराता है हमसे कोई उसको चूर करते हैं,
हम उसको चूर करते हैं, हम उसको चूर करते हैं,
जो टकराता है हमसे कोई उसको चूर करते हैं,
तुम्हारा जंग का ऐलान हम मंजूर करते हैं,
तुम्हारा जंग का ऐलान हम मंजूर करते हैं, तुम्हारा जंग का ऐलान हम मंजूर करते हैं,
जो टकराता है हमसे कोई उसको चूर करते हैं,
हम उसको चूर करते हैं, हम उसको चूर करते हैं,
जो टकराता है हमसे कोई उसको चूर करते हैं,
तुम्हारा जंग
जब आया तो अपनी फौज के सब अफसरों को पास बुलवाया, कहा तोपों से लंबी मार के तुम गोले बरसाओ, किले को हर तरफ से घेरने को फौज फैलाओ, ये राजा कब तलक फौजों को किले में छुपाएगा, सलसल गोलाबारी से किला भी टूट जाएगा, सुना ये अफसरों ने हुक्म तो तामील की जाकर, किला डाला जिमी को सब बड़ी तोपों को दबा कर, इधर से और उधर से तीरों की बरसात होती थी, सदा दोनों तरफ से तोपों की एक साथ होती थी, फजा में बन गया बादल धुएं का गोला बारी से, सदा तोपों की सुनकर शेर जंगल के फरारी थे, इसी सूरत रही ये जंग जारी 12 सालों तक, मगर पहुंचाना हर बार कारगर उन किले वालों तक, हुए सूराख दीवारों में किले की मगर फिर भी, कोई दीवार किले की जमीन पर गिर नहीं पाई,
किले पर काम आई जब न लश्कर की जवां मर्दी,
लश्कर की जवां मर्दी,
तरफ से तोहफे दागी जाती हैं, लेकिन कई रोज, कई महीने, कई साले, 12 साल गुजर जाते हैं इस जंग को, लेकिन अंजाम कुछ नहीं निकलता है। ये देखकर महमूद शाह ने जंग मुलतवी कर दी। उसके बाद उसने अपने नजूमियों को बुलाकर क्या मशवरा किया, समाप्त कीजिएगा।
बुलाए शाह ने अपने नजूमी और सब आमिल, कहा ये तो बताओ क्यों फतह होती नहीं हासिल, उसूले फतह की खातिर बताओ क्या किया जाए, किले पर कौन सी तदबीर से कब्जा किया जाए, हुए 12 बरस ये जंग अब तक भी अधूरी है, बाहर सूरत मिटाना जुल्म जालिम का जरूरी है, तुम्हें इल्म अमल से काम लेकर ये बताना है कि किस सूरत से इस मगरूर राजा को हराना है, नजर आएगा मांडोगढ़ में जब अमनो अमा हमको, तभी बस चैन आएगा बजेरे आसमां हमको, कहा सुनकर नजूमी आमिलों ने मेहरबान सुनिए, हिसाब अपना लगा कर देखते हैं फिक्र मत कीजिए, मदद ली अब जदी आदाद के मख्फी इशारों की, सभी ने पाल खोली चाल भी देखी सितारों की, हिसाब अपना लगाया तो ये मुस्तकबिल नजर आया, सभी ने मुत्तफिक होकर कहा ये पाल में पाया, पिसर डोसू मियां के नौजवान जो घर पे रहते हैं, लकब मीरा है सब सैयद अली दातार कहते हैं,
राजा और काफिर जोर आवर मार जाएंगे,
राजा और काफिर जोर आवर मार जाएंगे, राजा और काफिर जोर आवर मार जाएंगे।
इशारों को देखकर कहते हैं और सब यही कहते हैं कि हमने जो फाल खोली है उसमें यही है कि डोसू मियां के जो नौजवान एक पिसर हैं जिनका लकब मीरा है, नाम सैयद अली दातार है, अगर वो आकर ये जंग करें तो बेशक ये किला फतह हो सकता है। उसके बाद बादशाह महमूद मीरा दातार को खत लिखता है और आगे क्या होता है सुनेगा।
ये सुनकर बादशाह महमूद ने मीरा को खत लिखा के मांडोगढ़ का राजा करता है सब पर सितम बेजा, वो काफिर कुफर फैलाता है और ताकत दिखाता है दुश्मन दीन हक का, नेक लोगों को सताता है, जरूरत आपकी है आप अब तशरीफ ले आए, पता हासिल करें मांडों में आकर दीन फैलाएं, यूं ही महमूद शाह ने मीरा जी को 3 खत भेजे, मगर सैयद अली मीरा न आए सब परेशान थे, सुनो अब हाल तुम सैयद अली दातार मीरा का,
उनकी उम्र 16 साल आलम नौजवानी का। फकत दो चार दिन थे उनकी शादी होने वाली थी, इजाजत बाप ने भेजी थी माँ की खास मर्जी थी। मिले मीरा की माँ को खत जो उनको शाह ने भेजे, वो शादी की वजह से माँ ने सारे खत छुपाए थे। वो तीनों खत जो भेजे थे मिल तो गए थे, लेकिन सैयद मीरा अली दातार की वालदा ने इसलिए छुपा रखे थे क्योंकि 2-3 दिन के बाद उनकी शादी होने वाली थी। माँ चाहती थी कि मेरा बेटा शादी के बाद ही कुछ करे, लेकिन अल्लाह की क्या मर्जी थी और फिर आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। रहा शादी का दिन जब एक तो वालिद का खत आया, मिला मीरा को वो खत तो उन्होंने खोल कर देखा। कहा फिर माँ से खत ये पांचवा मानू से आया है, पराए जंग अम्मी मुझको बाबा ने बुलाया है।
अगर शादी की खातिर जंग पर अम्मी न जाऊंगा,
अगर अम्मी न जाऊंगा, अगर अम्मी न जाऊंगा,
अगर शादी की खातिर जंग पर अम्मी न जाऊंगा,
कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा,
खातिर जंग पर अम्मी न जाऊंगा, कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। आप अपनी वालदा से ये कहते हैं, ये सुनकर आपकी माँ क्या कहती हैं सुनेगा।
ये सुनकर माँ के दिल पर गोया एकदम गिर पड़ी बिजली, कहा ऐ लाल क्या कहता है कल होगी तेरी शादी। अभी है उम्र 16 साल की चढ़ती जवानी है, तुझे क्या हो गया है जंग पे जाने की ठानी है। मेरे बेटे खुशी से हुक्म वालिद का बजा लाना, तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर तुम जंग को जाना। कहा मीरा ने तुमको वास्ता महबूबे दावर का, अली ओ फातिमा का वास्ता शब्बीर ओ शब्बर का, अली अकबर का तुमको वास्ता रन की रजा दे दो। मेरी ऐ प्यारी अम्मी दूध बख्शो और दुआ दे दो। अगर वहदानियत इंसानियत को मैं बचाऊंगा, बरोजे हश्र में अच्छा सिला अल्लाह से पाऊंगा। ये सुनकर माँ की दोनों आंखों से आंसू हुए जारी, कहा अच्छा करो तुम जंग पे जाने की तैयारी। हसीनों खूबरू मीरा चले जब जंग को घर से, अजीजो अकरुबा और अहले बस्ती रंज में डूबे। जरा कुछ दूर चल कर वो उनावा गांव तक पहुंचे, रुके तालाब पर मिसवाक की और फिर बढ़े आगे। यकायक एक छड़ी उनको लगी तो घोड़े से उतरे, जो रुखसत के लिए आए थे उनसे ये कहा सुनिए।
अगर मैं जंग में पाऊं शहादत सब्र कर लेना,
शहादत सब्र कर लेना, शहादत सब्र कर लेना,
अगर मैं जंग में पाऊं शहादत सब्र कर लेना,
जहां मैं अब खड़ा हूं तुम यहीं पर दफन कर देना।
We'll be right back.
جنگ میں پاؤں شہادت صبر کر لینا جہاں میں اب کھڑا ہوں تم یہیں پر دفن کر دینا جو تھی مسوا خون کے ہاتھوں میں گاڑا وہیں اس کو کہا اچھا خدا حافظ فتح کی تم دعا کی جو برائے جنگ میرا حوصلے کے ساتھ جاتے تھے تھا کچھ جوش جہاد ایسا نہیں پورے سماتے تھے خدا کی یاد دل میں آنکھوں میں جلوا محمد کا لبوں پر مسکراہٹ نور چہرے سے ٹپکتا تھا سفر دو دن کیا تیزی سے تو پہنچے وہ منزل پر گئے خدمت میں والد کی سلام ان کو کیا جا کر اسی دن رات کو طوفان آیا اڑ گئے خیمے ہوئی برسات بھاری اور دیپک بجھ گئے سارے مگر ڈوسو میاں اور شاہ کا باقی رہا خیمہ چراغ ان کا رہا روشن ابھی طوفان جاری تھا نجومی کو بلا کر شاہ نے پوچھا سبب کیا ہے یہ کس کا خیمہ قائم ہے یہ دیپک کس کا جلتا ہے نجومی نے کہا لشکر میں اب میرا جی آئے ہیں چراغ ان کا یہ جلتا ہے وہی قرآن پڑھتے ہیں خدا کی یاد میں مشغول ہے چہرہ دمکتا ہے فتح کر لیں گے وہ راجا کو تم کو فکر ہی کیا ہے یہ سن کر خوش ہوئے محمود شاہ لے کر وزیروں کو ملے میرا سے جا کر اور کہا ہم پر عنایت ہو ہوئے بارہ برس لڑتے فتح ہم کو نہ مل پائی ہوئے مجبور تو امداد ہم نے آپ کی چاہی خدا کے فضل سے کل ہی قلعے پر فتح پائیں گے
خدا کے فضل سے کل ہی قلعے پر فتح پائیں گے خدا کے فضل سے کل ہی قلعے پر فتح پائیں گے
نماز فجر پڑھ کے دوسرے دن حضرت میرا چلے راجا سے کرنے جنگ لے کر جنگ کا سامان کدھر سے لی اجازت اور پھر دوڑا دیا گھوڑا چلے جاتے تھے تیزی سے ملا اکرا ہمیں دریا خدا کو یاد کر نعرہ کیا اللہ اکبر کا گھسے دریا میں تو دریا نے ان کو دے دیا رستہ قلعہ جب سامنے آیا تو پھر سید علی ٹھہرے تبھی سلطان اور ڈوسو میاں لشکر لیے پہنچے گئے میدان میں میرا لگایا زور سے نعرہ قلعے کی ہل گئی دیواریں ایسا زلزلہ آیا نکل آیا قلعے سے راجا اپنی فوج کو لے کر لگائے مورچے سب فوج نے میدان کے اندر لڑائی چھیڑ دی راجا نے تنہا دیکھ میرا کو اکیلے گھس پڑے لشکر میں میرا دیکھیے کیا ہو چلی شمشیر جب میرا کلاشوں سے بھرا میدان مثال شیر حملے کر رہے تھے حضرت میرا انہیں راجا کے سب لشکر نے چاروں سمت سے گھیرا تو پھر ڈوسو میاں سلطان کا لشکر بھی آ پہنچا
چلے دونوں طرف سے گردنے भाले, चले दोनों तरफ से गुण सुने दे बरछिया भाले।
हुए मीरा भी जख्मी पर बहुत से कत्ल कर डाले, राजा अपनी फौज लेकर आ जाता है। अब दोनों तरफ से जंग जारी हो जाती है। इधर महमूद शाह और सैयद मीला अली दातार का लश्कर है, डोसू मियां भी आ जाते हैं, उधर राजा की फौजें हैं। अब ये लश्कर जब आमने सामने होता है तो जंग किस तरह होती है सुनेगा। मकाबिल आया जब राजा तो झपटे सैयद मीरा, जो सूरत देखी सैयद की तो राजा हो गया लर्जा, गिरा घोड़े से नीचे तो उठा कर ले गया नौकर, कहा राजा ने अपनी फौज से मारो इसे बढ़कर, लगाया नारा एक मीरा ने और हमले किए बढ़कर, गिरे कट कट के सर भगदड़ मची मैदान के अंदर, न ठहरी फौज राजा की बहादुर शेर के आगे, सिपाही डाल कर हथियार सब मैदान से भागे, ये देखा जब के राजा ने मेरा लश्कर सभी भागा, किले पर जब नजर आया उसे इस्लाम का झंडा, गिरा घोड़े से नीचे और फिर जल्दी से वो संभला, उसे नौकर बिठा के घोड़े पे मैदान से भागा, पहाड़ों की तरफ जाते उसे मीरा ने जब देखा, उसी के पीछे अपना आपने दौड़ा दिया घोड़ा, उसे वो ढूंढते फिरते थे तन्हा उन पहाड़ों पर, गुफा के मुंह पे राजा का उन्हें एक मिल गया नौकर, कहा मीरा ने उस नौकर से राजा है कहां तेरा, तो घबरा कर कहा उसने के है इस गार में राजा, घुसे उस गार में मीरा तो राजा मिल गया उनको, पकड़ कर उसकी चोटी ये कहा तू अब बता क्या हो, अगर तुम मान जाओ तो बताऊं आरजू क्या है,
अगर तुम मान जाओ तो बताऊं आरजू क्या है, अगर तुम मान जाओ तो बताऊं आरजू क्या है।
आसान लड़ाई के बाद राजा की फौजें जब हथियार डाल देती हैं, राजा अपने घोड़े से नीचे आता है, लेकिन राजा का एक नौकर उसको उठाकर भागता है। सैयद मीर अली दातार भी उसका पीछा करते हैं और वो ढूंढते ढूंढते गुफा के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां राजा का एक नौकर मिलता है। आप जब उससे ये पूछते हैं कि कहां है तुम्हारा राजा, उसने घबरा कर कहा कि इस गार के अंदर है। आप उसके अंदर घुस जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा।
ये फरमाया तभी दातार ने बोलो इजाजत है, तुम्हारी क्या तमन्ना है कहो जो कुछ भी हसरत है, कहा राजा ने चोटी काट कर तुम मेरी ले से तुम कब्र से पांव की जानिब दफन करवाना। कहा सैयद ने अच्छा ऐसा ही होगा मगर सुन ले, अगर ईमान ले आए तो हम तुझको न मारेंगे। मगर राजा ने मौका पाके मारी तेग गर्दन पर, कलम होकर जिमी पर गिर गया सैयद अली का सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजू। राजा धोखे से आप पर वार करता है और आपका सरे मुबारक कलम होकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन मुजाहिदों की क्या शान है, समाप्त कीजिएगा। मगर धड़ आपका लड़ता रहा तो राजा घबराया, लगी तलवार एक राजा के ऐसी हो गया ठंडा। हुए राजा के धड़ के टुकड़े टुकड़े मर गया राजा, शहादत पाई मीरा ने मगर लब पर तबस्सुम था। हुई फूलों की बारिश हजरते मीरा के लाशे पर, दस्ते पाक में राजा की चोटी गार के अंदर। हुई जब रात तो मीरा ने वालिद को बिशारत दी, खुदा का शुक्र है उसने जवानी में शहादत दी। पहाड़ों पर जो गहरी गार है लाशा उसी में है, किया है कत्ल मैंने मांडो का राजा उसी में है। तमामी जंग के हालात से आगाह फरमाया, कहा मुझको उनावा गांव में तुम दफन कर देना। जो चोटी राजा की है पैरों की जानिब दफन करना। खुशी की बात है बाबा न तुम रंजो मोहन करना। खुदा की राह में जो मारा जाए जिंदा रहता है,
खुदा की राह में जो मारा जाए जिंदा रहता है, खुदा की राह में जो मारा जाए जिंदा रहता है।
दास्तान सैयद मीर अली दातार सुन रहे हैं। लीजिए ये आखिरी बंद समाप्त फरमाइए, इंशाल्लाह इसके बाद हम महाराष्ट्र के बहुत अजीम बुजुर्ग हजरत ताजुद्दीन बाबा नागपुरी की शान में कैसेट पेश करेंगे। इंतजार कीजिए बाबा ताजुद्दीन की शान में कैसेट का, और ये आखिरी बंद समाप्त फरमाइएगा।
गए दो सूमिया महमूद शाह उस गार के अंदर, मिली जब लाश सैयद की तो एक धक्का लगा दिल पर। उनावा गांव में पहुंचा जनाजा जब के सैयद का, इलाका सारा भारी रंज के तूफान में डूबा। सभी माँ बाप भाई बहन उनके अकरुबा सारे, हुए रो रो के मुजतरनी मुझा इस रंज के मारे। लगी थी हाथों में मेहंदी के शादी होने वाली थी, मगर मीरा की हूरों से हुई फिरदौस में शादी। जनाजे की नमाज उनकी पढ़ी फिर सबने दफनाया, जो थी राजा की चोटी उसको पैरों की तरफ गाड़ा। जो थी मिसवाक मीरा की बनी वो एक शजर ऐसा, के जिसके फूल फल और बीज पत्ते हैं बड़े उम्दा। जो लाए काम में तो दूर सब उत्ताद होती है, के बे
औलाद वालों के यहाँ औलाद होती है। जो ज्यारत करते हैं मीरा की वो मसरूर होते हैं। बला आसे बुजिन्नो भूत भी सब दूर होते हैं।
बहुत सच्चे वली हैं, नेक कसमों के काम आते हैं,
सभी के काम आते हैं, सभी के काम आते हैं।
बहुत सच्चे वली हैं, नेक कसमों के काम आते हैं।
बफजले की बुरिया ऐ शौक वो बिगड़ी बनाते हैं।